ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के केंद्र के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए अष्टलक्ष्मी है। सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल बर्लिन में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री को भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से अवगत कराया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक संपर्क के हिस्से के रूप में चार बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को जानकारी दी। श्री मिश्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा तथा एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडलों को जानकारी दी। संक्षिप्त जानकारी के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत सभी बाहरी वार्ताकारों को बताएगा कि भारत के साथ क्या हो रहा है और भविष्य में इन आतंकवादी हमलों से कैसे निपटा जाए। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कल टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। भारत ने पाकिस्तान की उड़ानों के लिए नोटम को अगले महीने की 23 तारीख तक बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत और पाकिस्तानी एयरलाइनों द्वारा संचालित स्वामित्व वाले और पट्टे पर दिए गए विमानों के लिए स्वीकृत नहीं है, जिसमें सैन्य विमान भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग जिलों में कल कुल 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर करीब 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी माओवादियों पर फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में चार खूंखार माओवादी मारे गए। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कल नई दिल्ली में एक बैठक की साझा अध्यक्षता की। समिति की इस 28वीं बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों को रोकने के तरीके और साधन तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर, लंबित मामलों की संख्या, विशेष अदालतों की स्थिति, सतर्कता और निगरानी समितियों के कामकाज सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का पांचवा दौर इटली के रोम में शुरू हो गया है। इस वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 232 रनों का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 19 ओवर और 5 गेंदों में 179 रन ही बना सकी। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने सिर्फ 48 गेंदों पर 94 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि बेंगलुरु के लिए फिलिप सॉल्ट ने 32 गेंदों पर 62 रनों का योगदान दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।